श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री जयपुर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अभिराम प्रभु का बहुत बड़ा अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से इस यात्रा का विवरण आपको दिया है। और इस विवरण से आप ये समझ भी सकते हो कि उन्होंने सबने मिलकर कितनी सारी कितने प्रकार के मेहनत की है, जिससे आपके लिए कोई असुविधा ना हो और आपकी सारी व्यवस्था खाने पीने की बस की जाने आने की। बहुत महीने से ये काम चल रहा है और बहुत महीने से कई घंटे हमने ये मीटिंग्स हमारे ऑफिस में की है। तो सबसे पहले यात्रा कमेटी में जो सेवा दे रहे हैं उन सबका हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन लोगों की सेवा के बिना यात्रा संपन्न नहीं हो सकती है। जितने आराम से हम जा सकते हैं क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं। मेरा भी आराम जो होता है ना वो इनके ही मेहनत की वजह से होता है, तभी मैं अच्छी कथा या प्रयास कर सकता हूँ अच्छी कथा देने का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो यात्रा निकलती है ना भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है ये। दिस इज़ अ वेरी बिग मिरेकल। कोई आपको बोलेगा कि हिंदुजा हॉस्पिटल में यात्रा जा रही है तो आपको क्या लगेगा? इम्पॉसिबल है। हाँ, जस लोग हॉस्पिटल से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं सब मरीज लोग और स्टाफ लोग, ऐसा स्वप्न में भी मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा यह स्वप्न था कि ऐसा होना चाहिए और वो आज वो होते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे लिए भी आज भी इतनी यात्राएं देने के बाद भी एक आश्चर्य है कि ये हॉस्पिटल के माध्यम से मरीज, हमारे पुराने मरीज और डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स किसी धाम में जाकर भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं, धाम की यात्रा करना चाहते हैं परिवार के साथ में। एक कोई मरीज है लेकिन उसके माता पिता भाई बहन सब भी आ रहे हैं। ये बड़े ही खुशी की और बड़े आश्चर्य की बात है और इस आश्चर्य के हम लोग साक्षी हैं सब लोग। वी आर विटनेस ऑफ दिस मिरेकल। हाँ, और ऐसे ही चलता रहे सालों सालों तक, लोग बीमार होने के माध्यम से भगवान को मिले। है ना, जैसे हमारे एक महाबलेश्वर में हमारे एक परिवार है, इस यात्रा में नहीं आ रहे हो लेकिन वो हर यात्रा में आते। तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हैवी ड्यूटी ड्राइवर थे और वो यहाँ पर एक बार, उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पैनल पे है, तो बीमार पड़ने से वहाँ हमारे एम्प्लॉयज हमारे पास में भर्ती होते हैं। तो वो किसी बुरी बीमारी से भर्ती हो गए यहाँ पर और यहाँ पर बीमारी ठीक करते करते उनको हमारे स्पिरिचुअल केयर के स्टाफ मिले, फिर उन्होंने उनको समझाया और इतना उनका जीवन परिवर्तन हुआ कि आज वो भगवान के भक्ति में 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, हर यात्रा में आते हैं, सेवा करते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। और मैं उनके साथ घर में जाके महाबलेश्वर में रहता भी हूँ कई बार, और बार मुझे बिना मिले हुए, जब यहाँ मिलते हैं या तो वहाँ मिलते हैं, बिना भूले मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी बीमार पड़े हमारे प्रभु जी बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि मैं बीमार पड़ा बहुत अच्छा हो गया? ले, मैं बीमार पड़ा बहुत अच्छा हो गया, भक्ति विदान में भर्ती हो गए, वहाँ पर हमारा आपका परिचय हुआ और हम भक्ति में आ गए, जीवन इतना परिवर्तन हुआ, तो हम उस बीमारी को अनंत बार धन्यवाद देते हैं। ये भी एक चमत्कार है। बीमारी को हर बार लोग कोसते हैं कि क्यों बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन बीमारी यहाँ पर एक शुभ शकुन बन सकती है, ऐसा वातावरण प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पर हो रहा है। तो वैसे ही मैं भी जानता हूँ आप में से बहुत लोग मरीज हैं, बहुत लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं, कोई नौकरी करने के लिए यहाँ पर आया था, कोई बीमारी लेकर आया था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि आप किसी भी कारण से यहाँ पर आए हों, भगवान ने सब पर कृपा किया है, हम पर भी किया है हमारा भी एक ड्रीम था एक दिन कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग यात्रा करें और हम लोग लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान दें और हम लोगों को शास्त्र का परिचय करा दें, हम यज्ञ करें, हाँ हम भगवान की प्रार्थना हॉस्पिटल में करें, हम भगवान के प्रवचन हॉस्पिटल में करें और ये सब करते हुए पगार भी मिले। ऐसा हमारा एक स्वप्न था बहुत विद्यार्थी दशा में और आज ये स्वप्न साकार है पूरा। ये सब काम हम आज कर रहे हैं और हमको तनख्वाह भी मिल रही है, यानी कि हमारा गृहस्थ है हम तो हमारा परिवार भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमको ब्रह्मचारी बनेंगे मंदिर जाएंगे तो ही हमको ये सब करना मुमकिन होगा, नहीं, ये व्यावसायिक जीवन में भी सब कुछ मुमकिन है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल केयर, मैनेजर ऑफ स्पिरिचुअल केयर ऑफिसर, स्पिरिचुअल केयर असिस्टेंट, ये सारे आश्चर्यजनक पोस्ट जो है ना ये अस्पताल में है सब। और 40 लोग काम कर रहे हैं भगवान की विषय में और उसको बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को संपन्न बना रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत इसमें ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मुझे ऐसा अनोखा मौका मिला जा रहा है। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मैं यात्रा देता हूँ, प्रवचन करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, किसी को कष्ट है तो काउंसलिंग करता हूँ। ये मुझे लगता है कि MBBS और MD करने के बाद मरीज देखने से भी उतर मेरे को भाग्य लगता है इसका, क्योंकि MBBS MD डॉक्टर हम लोग बाहर से भी बुला सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक ध्यान आध्यात्मिक देखभाल सब लोग नहीं कर सकते। तो भगवान का अनंत रूप से धन्यवाद है कि ये अस्पताल के माध्यम से हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। अभी देखो 2006 से यात्राएं शुरू हो गई और आज तक आपको आनंद होगा सुनकर कि हमने अधिकतर सारे धाम पूरे कर दिए। अभी एक उत्तर दिशा में एक बाकी है जिसके लोगों को इंतजार है, वो है बद्रीनाथ हिमालय। तो इस तरह से साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक सब कुछ हो गया है, कितनी अद्भुत बात है ये। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यात्रा क्यों जाते हैं, व्हाई डू वी गो टू यात्रा। ऐसा नहीं कि भक्ति विद्यालय में अच्छा व्यवस्था हो रहा है, अपने आप ही खाने पीने का रहने का होटल का सब सारा इंतजाम, वो लोग अपना हेडेक ले रहे हैं, अपना भी एक बार हो जाए तो अच्छा है ये इधर का मूड नहीं है। यात्रा निकालने का जो योजना था, जो कंसेप्ट था, कल्पना थी, उसका पर्पज ये था कि लोगों को भगवान के धाम का परिचय हो और लोगों को भगवान के धाम में जाकर भगवान का शरण आश्रय मिलने का मौका मिले। हम सब लोग यात्रा में जाते हैं कि हम यात्रा के जो अधिष्ठात्रा भगवान हैं, जैसे जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी कृष्ण बैठे हुए हैं और द्वारका में द्वारकाधीश भगवान बैठे हुए हैं और ऐसे हर स्थान के एक भगवान होते हैं, श्रीरंगम क्षेत्र के रंगनाथ जी भगवान हैं। तो उस भगवान के विशेष रूप को हम अपने आप को शरण में देना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग अपने मन में फिट कर लीजिए, हम लोग साइट सीइंग करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग बहुत साइट देखेंगे लेकिन हमारा साइट सीइंग का पर्पज नहीं है। इसमें सब इंक्लूड है, ये होने वाला है, साइट सीइंग होगा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, महल देखेंगे, फोर्ट देखेंगे, किला भी देखेंगे, कभी कभी किसी की यात्रा में हम लोग नदी में भी घूमते हैं, बोटिंग करते हैं, ये सब होगा लेकिन उसके लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए और वहां पर भगवान ने क्या लीला किया उसको समझने के लिए हम जा रहे हैं। ये हमारा बेसिक पर्पज है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको बस से उतारते बोलते हैं देखो यहाँ पर 4 मंदिर है, ये इसका मैप है, जाओ मत्था टेक के आ जाओ, आधा घंटे का समय है, ऐसा भी कर सकते हैं और आपको बहुत सारे साथ भी दिखा सकते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा और याद में कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ आने के बाद में कहाँ गए कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्थान को लेके जाने के पहले आपको उसकी कथा सुनाते हैं ताकि आपका प्रार्थना का भाव बने, क्या प्रार्थना करना है वो बताते हैं, कौन से भगवान है, उसकी कथा क्या है, वो सब समझने के बाद में सुनेंगे देखेंगे ना तो आपको उसका ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये हमारी यात्रा की विशेषता है कि हम हर जगह का विवरण करते हैं, इतिहास बताते हैं, पौराणिक कथा बताते हैं, भगवान का ऊपर क्या संदेश है हमारे लिए, क्या हमारे लिए टेक होम मैसेज है उसके बारे में बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग भी इसी भावना से यात्रा में आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको आज से ही प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें वहाँ तक पहुँचा दो, क्योंकि बहुत लोगों की यात्रा कैंसिल हो जाती है। क्यों कैंसिल होती है, कोई माँ बीमार पड़ गई, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई खुद बीमार पड़ गया, कोई आते आते फिसल गया, उधर फ्रैक्चर हो गया और हॉस्पिटल में चला गया, ऐसे कई किस्से होते हैं। तो भगवान के धाम में जाना ऐसा आसान नहीं है। आपको लगेगा हम टिकट निकाल के जाएंगे, पूरा रूम बुकिंग करेंगे, आप भक्ति विधान में आके रजिस्टर करेंगे, पैसा भी भर दिया है तो यात्रा हो जाएगी, ये मत समझना। यात्रा भगवान की कृपा से होती है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ आपको यात्रा के बारे में, मैं भी वहाँ उनकी कृपा से पहुँचने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तो जाते रहता हूँ उसमें कि अभी भी जाऊँगा, नहीं, वो विकेट गिर सकती है उधर। हाँ, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए मैं भी पहुँचूँ, और खुद के लिए भी कीजिए कि आप भी पहुँचें, और मेरी भी प्रार्थना है आपके लिए कि आप भी वहाँ पर सब लोग पहुँचें, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान को मिलना बहुत बड़ी प्राप्ति है जीवन की। और यात्रा का मतलब होता है साथ में जाना, इसलिए प्रभु जी ने बताया अपना अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम मत बनाइए। अरे द्वारका जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, अरे मेरी एक पूजा थी मन्नत, मेरे को वो पूरा करना है उधर जाके। आपको ऐसा कुछ करना है तो आप एक दिन पहले वहाँ पहुँचिए, या तो एक दिन बाद में वहाँ रहिए, और फिर यात्रा समाप्त हो गई तो अपना प्रोग्राम जो करना है करें, हमें उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यात्रा के बीच में आपको कुछ खुद का प्रोग्राम नहीं करना है। या तो यात्रा की कथा चल रही तो 2 घंटे का समय चला के शॉपिंग करके आते हैं, बहुत अच्छा सैंडल वहाँ पर आया है वो लेके आते हैं, उसको जयपुर की खासियत है, ये सब नहीं करना है। वो सबके लिए भी थोड़ा समय देते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन यात्रा में जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है उसके साथ में चलना है आपको। और हमने यहाँ पर एक योजना बनाई है कि इस दिन यहाँ जाएंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे, कथा यहाँ यहाँ होगी, मुझे एक शेड्यूल दिया गया है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद में स्थितियाँ बदल सकती हैं, आप जानते हैं ना, तूफान भी आ जाते हैं बीच में कभी, तो वर्षा भी हो जाती है, वर्षा का समय नहीं लेकिन वर्षा हो रही है, बीच में सडनली भारत बंद होता है ना कभी कभी, रास्ता बंद, रास्ता रोको, ट्रेन रोको, क्या क्या होता है इंडिया में कुछ समझ नहीं सकते हम लोग। तो उस समय स्थिति को देखते हुए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग प्रोग्राम थोड़ा चेंज कर देते हैं। कभी कभी अटक जाते हैं, गाड़ी पंक्चर हो जाती है कुछ यहाँ पर, एक जगह पर फंस जाते हैं, तो उस समय पर भी आप लोगों की सुविधा, रात्रि का समय, स्त्रियाँ बच्चे सब देखते हुए हम लोग अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। तो ये मत समझना कि क्या प्रभु जी ये सब लिख के दिया था, आपने भी सब कुछ चेंज कर दिया, अब ये भी मिस हो गया, वो भी मिस हो गया। जिंदा लौटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यात्रा से यात्रा में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि आप लोग भी यात्रा में आते रहें, क्योंकि एक दुर्घटना अगर होती है किसी की गलती से तो जिंदगी भर आपको याद रहेगी, पता है वो भक्ति विधान की यात्रा में गए थे ना जयपुर में, वो ऐसा ऐसा हुआ था, हमने अभी जाना चाहते उधर। तो ये प्राकृतिक असुविधाएं जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, वहां पर जो होने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं। मैं आपको एक अच्छी छोटी सी कहानी बताता हूँ, मेरे गुरु महाराज के साथ में मेरी चर्चा हुई थी, सब लोग सुन रहे हैं ना, क्या सबको नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं ना, तो हाथ ऊपर कीजिए ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1994 में मैंने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, उसमें कथाकार हमारे महाराज थे लेकिन मैं व्यवस्थापक था, उसमें 425 लोग थे, 8 बसें थी। हाँ, तो हमारा 8-15 दिन का कुछ प्रोग्राम था, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत जगह अच्छा यात्रा हो गया, और लास्ट में जिस बस में मैं था उसी बस में गुरुजी आके मेरे बाजू में बैठ गए और पूछ रहे हैं तो विश्वरूप फिर कैसी रही यात्रा। तो प्रबंधक का माइंड कैसा रहता है, महाराज हमने इतना सारा प्लानिंग किया था लेकिन लोग बहुत धीरे चलते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, लेट कर देते हैं, एक आदमी के लिए बस 15 मिनट लेट हो जाती है, फिर ऐसा है फिर वहाँ उतरने के बाद भी धीरे धीरे उतरते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, कोई पीछे 1 किलोमीटर कोई 1 किलोमीटर आगे, तब तक कथा शुरू नहीं हो सकती है, ऐसा बहुत सारा हमारा टाइम पास हो गया है, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान हमारे रद्द हो गए हैं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। तो गुरु जी बड़े गंभीर हो गए, तो मुझे डर लगने लगा अभी क्या मिलेगा। उन्होंने कहा था उस समय, मुझे अभी भी याद है, मेरे हृदय में ऐसे पत्थर की लकीर तरह उस पर लिखा हुआ है हृदय में, वो ये है कि धाम भगवान का घर है, आपने भगवान के घर में जाकर कुछ देखने का प्लानिंग किया है लेकिन वो घर भगवान का है, आप उनके घर में से क्या दिखाने का है वो उनकी मर्जी है, और उनकी मर्जी से क्या क्या देखने को मिलता है उसके लिए केवल धन्यवाद की भावना आपके मन में होनी चाहिए। मेरे घर में आप आएंगे तो कौन सा बेडरूम का कौन सा हिस्सा दिखाना है वो मेरे हाथ में है, आप ऐसा नहीं बोल क्या प्रभु जी आपने वो बेडरूम तो दिखाई नहीं हमको ऐसा बोल नहीं सकते ना, क्योंकि घर का मालिक मैं हूँ। उस तरह से महाराज ने एक अच्छा अनमोल अमृत संदेश दे दिया, वो ये है कि भगवान के धाम में जो भगवान दिखाते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसमें हमको संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए और धन्यवाद की भावना होनी चाहिए भगवान से, थैंक यू वेरी मच आपने हमको इतना सब दिखाया। और आप लोगों ने सहयोग दिया समय का और अच्छी तरह शासन का सहयोग दिया, तो सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर में जो वही होता है, जो मंजूर है खुदा होता है। हरे कृष्णा। इसलिए ये चेतनाएं जो है ना, हम अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग अपनी बैग भर रहे हैं। एक्चुअली अब बोले बैग तो है नहीं इधर, कौन सी बैग भर रहे हैं, इधर की बैग भर रहे हैं, बाकी वाली बैग तो स्वेटर वाली घर पे भरेंगे, ये वाली बैग जो है ना ये भरना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ की तैयारी आपकी ठीक से नहीं होती, यहाँ के जो जरूरी विचार अंदर पहले बैग में नहीं भरते हैं, हृदय के बैग में, तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। घर में जाकर कपड़े भरेंगे, मेडिसिन भरेंगे, बॉटल भरेंगे, सब कुछ भरेंगे। चेतना तैयारी करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग आज मिल रहे हैं यहाँ पर, इतना समय यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी चेतना, जब तक हमारा एंटीना सही दिशा पर नहीं है, तब तक धाम का पूरा आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं होगा। इसलिए आपका एंटीना को हम लोग सेटिंग कर रहे हैं आज एंटीना का जो दिशा है ना वो जयपुर की ओर सेट कर रहे हैं उसको, ताकि आपका सारा चीज जयपुर से जो मिलने वाला है, जो आपको मिल सकता है, वो पूरा 100% आपको मिले, इसलिए ये कोशिश चल रही है। आप लोग जितना सहयोग देंगे, मेरी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमारी यात्रा में जो भी आते हैं अपना आध्यात्मिक जो भंडार है वो भरकर घर लौटें, खाली भंडार लेकर मत लौटें। पूरी कृपा जो वहाँ पर मिल सकती है, मिलने वाली है, मिलने की व्यवस्था की गई है, वो सारी कृपा आपको प्राप्त हो और उसका परिणाम आपके रोज के जीवन में हो, ये हमारा उद्देश्य है। आपको पूरा लाभ मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा कि आप भगवान के भक्त बनेंगे, अगर बने हुए हैं तो और अच्छे भक्त बनेंगे, और प्रगति करके और अच्छी तरह से भक्ति करने का संकल्प लेके आप लौट के आएंगे, ये हमारा पर्पज है। हाँ, कोई साइट सीइंग का पर्पज नहीं है, कोई एंजॉयमेंट कर्मणों मनोरंजन का पर्पज नहीं है, और मनोरंजन होगा ही होगा, लेकिन मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। जब भगवान के लिए जाएंगे तो मनोरंजन भी होगा, अच्छा व्यंजन भी मिलेगा, सब जयपुर के अच्छे अच्छे रसोईया से बात कर ली हमने, अच्छा अच्छा लोकल आइटम खिला दो भक्तों को, जयपुर का पूरा आस्वादन करा दो, ये सब कुछ व्यवस्था हो गई है, तो मनोरंजन होगा, खुशी होगी, संतुष्टि होगी, जबान को, पेट को, दिमाग को, सब जगह होगी। लेकिन जा रहे हम लोग भगवान को मिलने के लिए। इसलिए समझो कभी आप आए और आज अनाउंस किया है कि जयपुर का स्पेशल स्वीट आप आज बनाया गया है, और जब तक समझो आप आ गए लेट, खाना पीना अपना ऊपर जाके धो, हाथ धो के वगैरह, और समझो वो स्वीट खत्म हो गया, समझो, बता रहा हूँ पहले ही आपको, ऐसे हमारी विचार नहीं है, लेकिन समझो खत्म हो गया, तो आपको क्या विचार करना चाहिए, मैं जयपुर में क्या स्वीट खाने को आने वाला था क्या, क्या मैं यहाँ पर स्वीट खाने आया हूँ, नो, मैं यहाँ पर भगवान से मिलने आया हूँ, भगवान से परिचय करने वाले हूँ, उनके बारे में सुनने के लिए आया हूँ। अगर नहीं मिला एक बार तो चलेगा, लेकिन भगवान को मिलना जो है वो होना चाहिए, बस वो होना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होगी, कुछ कुछ नहीं होगी, लेकिन हम लोग भी उसमें तैयार रहते हैं कि ठीक है जो भी भगवान की इच्छा है, नो प्रॉब्लम, जब तक हमें भगवान का कथा का परिचय हो रहा है, भगवान के स्थानों का परिचय हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। और एक चेतना की तैयारी होती है, वो ये होती है कि आप सब लोगों को जप करना है, क्योंकि जप के बिना आत्मा के दरवाजे नहीं खुलते हैं, मन के खुलते हैं, बुद्धि के भी खुल जाते हैं, जप ऐसी एक चाबी है जो आत्मा के दरवाजे खोल देती है, जब आत्मा के दरवाजे खोलती है, खुल जाते हैं, तो फिर कृपा अंदर प्रवेश करती है। और आपको जप करने में संकोच है, जप करने में आपको अच्छा लगता नहीं है, बोर हो जाता है, तो फिर हमारी यात्रा जो है सफल नहीं होगी, कभी आपको उसमें यात्रा में आनंद नहीं होगा, आपकी कंप्लेंट रहेगी। और जप करेंगे तो आपको वो चेतना मिलेगी जिससे आपका संतुष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, और भगवान को धन्यवाद देते हुए आप लौट के आएंगे घर पे। तो हमारी इच्छा है कि आप सब लोग जप करें, और कठोर वचन में अगर कहना है, अगर आपको जप नहीं करना है तो हमारी यात्रा में मत आइए। आप केसरी ट्रैवल है ना, केसरी ट्रैवल और क्या, कितने अच्छे अच्छे ट्रैवल्स हैं, अच्छा बिजनेस भी करते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं, वहाँ जा सकते हैं आप, वहाँ कोई बोलता नहीं जब करो खाली इतना बोलते हैं कि आधा घंटा है, चार मंदिर में मत्था टेक के आना, इतना बोलते हैं। तो हमारा थोड़ा सा अलग स्टाइल है, क्योंकि हमारे गुरु जी है ना, वो बहुत ही आध्यात्मिक गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो सब जीवों का आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए वो नहीं आए थे यहाँ पर, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, सब जगह गए, किसी का मनोरंजन करने के लिए गए नहीं थे वो, उनके लिए क्या जरूरी है वो बताने के लिए गए थे वो, और उनका जीवन परिवर्तन करके लौट के आए। तो हम लोग को भी यात्रा का जो गाइडलाइन है वो उनके द्वारा ही दिया गया है, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था, उनके शिष्य हमारे गुरु हैं, और उन्होंने अपनी यात्रा का एक स्टैंडर्ड बनाया है, और उस तरह से हम लोग यहाँ पर भी चल रहे हैं, जो मंदिर में यात्रा होती है उसी स्टैंडर्ड से हम लोग भी यहाँ पर चलते हैं। मंदिर की यात्रा के बहुत कठोर नियम होते हैं, 16 माला के बिना किसी को एंट्री नहीं उधर, बहुत कठोर कठोर नियम है, लेकिन उतने कठोर यहाँ पर नहीं है, और लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए नियम शिथिल है, लेकिन फिर भी नियम जीरो नहीं है, नियम है। आप लोगों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए और इसका पूरा लाभ लेकर लौट के आना है। और यात्रा में एक और विशेष बात है, यात्रा उन्होंने बताया कि भगवान का घर है धाम, धाम भगवान का घर है, तो हमारी तरफ से दो गंदगियां वहां पर होने ही वाली है। कौन सी गंदगियां? हम लोग टॉयलेट जाएंगे और जो स्नान वान करेंगे, जो भी करेंगे, मल विसर्जन करेंगे, वो गंदगियां हमारे तरफ से प्राकृतिक रूप में जाने वाली है। उसके बाद में हमारे तरफ से कोई गंदगी धाम में नहीं होनी चाहिए। जहां कचरा पैदा हो गया अपने पास रखो, एक प्लास्टिक की थैली रखो, उसके अंदर रखो या तो और कोई थैली रखो, और यात्रा के समय पर जहां पर डस्टबिन मिलेगा या आश्रम में लौट के आगे वहां पर डालना है। कोई केला खाया तो बस में से ऐसा फेंक दिया 1 किलोमीटर दूर, हाँ, कोई पानी पिया पानी फेंक दिया, कोई हाथ धोया बस के बाहर, ये सब काम यात्रा में नहीं करना चाहिए। ये जानते हुए कि हमारा जो गंदगी है वो भगवान के शरीर पर फेंक रहे हैं हम लोग, तो इसलिए ये प्लास्टिक का नियम बनाया है। प्लास्टिक कलयुग का सबसे बड़ा शाप है, इससे आरोग्य बिगड़ता है, बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है। इसलिए प्रभु जी ने एक बात थोड़ा बताना भूल गए वो, कि आपको प्लास्टिक बोतल लेके जाना नहीं यहाँ से, आपको एक नॉन डिस्पोजेबल पानी की बोतल लेके जाना है, जो स्टील की भी हो सकती है, जो बोलो अलग अलग रंग की मिलती है, जो आप फेंक नहीं सकते उसको, हाँ वैसे बोतल लेके जाइए, उसी में लगातार बार बार पानी भर के लेके जाइए। हमारे पास हर जगह पर पानी की अच्छी व्यवस्था होगी ताकि आप बीमार ना पड़े, लेकिन उसको वहीं से भर के आप लेके जाते रहिए। कब इमरजेंसी आ गई तो आप हम लोग बताएंगे आप खरीद लो करके, उस समय भी आपको बोतल कहीं भी पब्लिक में फेंकना नहीं है। हमारी तरफ से यात्रा के स्थान पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना पेपर का कचरा होना चाहिए, ना बिस्किट का पूड़ा होना चाहिए, किसी प्रकार का कचरा, केले का छिलका हो या फल के छिलके हो, कहीं डालना नहीं चाहिए। ये हमारी यात्रा का एक कल्चर है। आप लोगों को देख के लोगों को लगना चाहिए कि बहुत ही ट्रेंड यात्री हैं ये लोग, बड़े क्या कहते हैं शासन के साथ चलते हैं, लाइन से चलते हैं, जो बताया वो करते हैं, सब कुछ ढंग से करते हैं, वो पूरा लाभ लेके जाते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे स्वयं बताया है पर्सनल कि आप यात्रा में आश्रम बुक करते हो ना या होटल बुक करते हो, तो वो कमरा आपको देने के समय कैसा था उससे भी अधिक स्वच्छ रूप में आपको छोड़ के जाना है। तो अक्सर क्या होता है ना, अब रूम छोड़ के आया ना तो पेपर फेंका, कांच फेंका, ये ग्लास फेंक दिया पेपर का, ये फेंक दिया वो फेंक दिया, अभी क्या है आपने को क्या है, अभी तो पैसा दिया है, अभी साफ करना उनका काम है। नहीं, उसमें आपकी डिग्निटी का भी सवाल है कि आप कौन से कल्चर से आ रहे हो। अगर आपने अपना अपना बनाया हुआ कचरा साइड में कर दिया और डब्बे में डाल दिया तो उसमें आपका कीमत मूल्य बढ़ता है, आपका सम्मान बढ़ता है कि हाँ एक बम्बई से ग्रुप आया था, इतने कल्चर्ड लोग थे वो, उन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने प्रार्थना किया, वो कितने भावुक लोग थे, बड़े प्रेम से यात्रा किया उन्होंने, ऐसा आपका गौरव बढ़ेगा। और आपका बढ़ेगा तो आपके गुरु जी का गौरव बढ़ेगा, आपकी संस्था का गौरव बढ़ेगा। ये तुमको ध्यान में रखना है हमेशा। और इस यात्रा में हम लोग यज्ञ करने वाले हैं, द्वारका यात्रा से हमने यज्ञ करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यज्ञ करने से बहुत पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस, हाँ, शुभता निर्माण होती है, और वो एक संकल्प यज्ञ है। हम सभी आचार्यों को आह्वान करके, संतों को आह्वान करके उनको आहुति अर्पण करेंगे अग्नि के माध्यम से, और यात्रा के आध्यात्मिक यश के लिए प्रार्थना करेंगे, उसको हम संकल्प यज्ञ कहते हैं। तो हम लोग वो 26 तारीख को करने वाले ना, 6:30 बजे सवेरे करने वाले हैं। तो जिनको इस यज्ञ में भाग लेना है उनको वहाँ पर पंजीकरण करना है, और यज्ञ में उनको बिठाया जाएगा, आपके सबके प्रतिनिधि के रूप में वो बैठेंगे और हम यज्ञ करेंगे, फिर हमारी यात्रा का आरंभ करेंगे। और एक बात इस यात्रा में हम विशेष इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सब लोग सुन लीजिए, कि हम लोग डांसिंग कीर्तन करेंगे, जो प्लान के बिना कभी हो नहीं सकता है। लेकिन इस युग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, उसमें भी कीर्तन नहीं है, संकीर्तन मतलब लोगों के संघ में किया हुआ कीर्तन, एकत्रित रूप में किया हुआ कीर्तन, ज्वाइंट वेंचर है वो, और वो युग धर्म है इसका। हम जब करते हैं इंडिविजुअल अपने साथ में करते हैं, लेकिन संकीर्तन लोगों के साथ में करते हैं, और लोगों के साथ में जब संकीर्तन करते हैं तो नृत्य भी करते हैं, और नृत्य में कोई भी दुख टिक नहीं सकता है, सब दुख दूर भाग जाते हैं। हाँ, तो यात्रा एक ऐसी विधि है जो 5 अंग है भक्ति के, उसमें से एक महत्वपूर्ण विधि यात्रा है, धाम में निवास। ये 5 प्रमुख भक्ति के जो अंग हैं उसमें से एक प्रमुख अंग है। जैसे एक है भगवान के नाम का जप, एक है भक्तों का संग, एक है भगवान के शास्त्र का अध्ययन, और एक है भगवान के विग्रहों की पूजा, और पांचवा है धाम का निवास। तो ये धाम निवास जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हर साल में सब कुछ काम बाजू में रखे, छुट्टी लेके सब कर्तव्यों से पारक होके कुछ समय के लिए जरूर भगवान के धाम में जाना चाहिए। और जहाँ भगवान ने लीला किया है वहां पर जाकर दर्शन करना चाहिए भक्तों के साथ में। ये सब स्थाने हेरी वो आमी प्रणयी भक्ति संगई, जो भगवान पर प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों के साथ में ऐसे स्थानों का दर्शन करना चाहिए, वहां की कथा सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्र का हमारे लिए आदेश है। और हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इस जीवन में बहुत कष्ट है, पारिवारिक जीवन में कष्ट है, व्यावसायिक जीवन में कष्ट है, सामाजिक जीवन में कष्ट है, पति पत्नी में कष्ट है, बालकों में कष्ट है, परिवार सोसाइटी में कष्ट है, शरीर में अंदर कष्ट है, है ना, सब जगह कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, जवानी का कष्ट है, बालपन का कष्ट है, किधर कष्ट नहीं है, किधर दुख नहीं है, सब जगह दुख है। तो दुखों का निवारण और दुखों से क्या कहते हैं निवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी यात्रा बहुत आवश्यक है, ताकि कुछ समय के लिए सब छोड़ दें, बस फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट बी विद द लॉर्ड, ड्रॉप एवरीथिंग, और कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त करें अंदर के लिए, ऐसा पोषण प्राप्त करें कि आगे आने वाले दुखों को कुछ झेलने की शक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि आज संकट तो आने वाला है। जिसके पास कम शक्ति है वो बहुत रोएगा, और जिसके पास बहुत शक्ति है वो हंसते हंसते सब संकटों का सामना करेगा, है ना। एक सुंदर उदाहरण देते हैं उसके लिए, समझो मैंने ऐसे यहाँ पर एक लाइन निकाली, ऐसे एक लाइन निकाली, कितने इंच की, एक इंच की, और मैं आपको बताऊंगा कि उस लाइन को हाथ लगाए बिना उस लाइन को आपको छोटा करना है, उसको छूना नहीं, आपको बिना उसको छुए उस लाइन को छोटा करना है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बिना उसको छुए, और उसको छूने का टाइम देंगे तो खोड़ रबर लेंगे खोड़ देंगे उसको, और तो आधा इंच कर देंगे सिंपल, लेकिन बिना उसको छुए अगर छोटा करना है तो उसके सामने एक बड़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, उस छोटे लाइन के सामने एक बड़ी लाइन 10 इंच की ड्रॉ करेंगे ना, तभी अपने आप वो एक इंच की लाइन छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या मैसेज है हमारे लिए, ये लाइन जो है ना हमारे दुखों की लाइन है, इसको आप लोग छू नहीं सकते, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, कितना भी आप करो दिमाग लगाओ सब मैनिपुलेट करो, लेकिन वो जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको भुगना ही पड़ेगा। लेकिन वो दुखों का जो अनुभव है उसको अगर आपको कम करना है तो आपको खुशियों का लाइन जो है ना वो बड़ा करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति का जो लाइन है वो बड़ा करना पड़ेगा, तो अपने आप उस आध्यात्मिक शक्ति के लाइन के सामने दुखों की लाइन छोटी सी हो जाएगी। और समझे आपने बहुत ही लंबी कर दी तो दुखों की लाइन दिखेगी नहीं, किधर गई वो, ऐसा ढूंढेंगे आप, इतनी बड़ी लाइन बना दी उसके सामने तो दुखों की लाइन जो एक इंच की थी वो बोलेंगे किधर गई वो, ये तो 100 मीटर की लाइन लगा दी हमने यहाँ पर। ऐसा हो सकता है, मैं खाली आपको फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, तो सेमिनार नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ, लेकिन ये रहस्य है कि जीवन में जो अनिवार्य कष्ट आते हैं वो एकदम इनसिग्निफिकेंट तुच्छ बन सकते हैं अगर आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और आनंद का अनुभव है, तो उस आध्यात्मिक शक्ति और आनंद के अनुभव के सामने जीवन के चलने वाले जो रोज चलने वाले दुख हैं वो एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आज वो बहुत बड़े लग रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन जब आध्यात्मिक आनंद को इतना बढ़ाएंगे हम तो वो इतने से हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आप हवाई जहाज में बैठे होंगे बहुत कभी, तो कैसा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, इतने सारे लोग हैं लेकिन वो डॉट भी दिखता नहीं है, गाड़ी भी लगता है बिंदु है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग है वो भी बिंदु दिखती है उधर, क्यों, हम लोग इतने ऊपर गए हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज लगती थी नीचे वो अभी एकदम इनसिग्निफिकेंट हो गई है। तो आप लोगों को भी ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए हम लोग भगवान के पास जा रहे हैं जो हमको सब चीज से ऊपर उठाएंगे और बताएंगे देखो इस स्थिति पे आओगे ना आप तो यहाँ चलते हुए सारे गम जो है ना वो तुच्छ हो जाएंगे, आप मेरे साथ में इस स्थिति में आ जाओ तो आपको सब चीज छोटी नजर आएगी। मैं अभी दुबई गया था तो मैं 225 मंजिल के एक बिल्डिंग में हमको देखने को मिला, तो 125 मंजिल में गया तो जितनी बड़ी बिल्डिंगें थी वो छोटी छोटी नजर आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सबके ऊपर जाते हो तो नीचे की सारी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं। तो आइए हम सब लोग अपने सारे तथा कथित दुख दर्दों को बाजू में रखे भगवान के पास चले जाएं और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं कि इस दुनिया के सारे कष्ट जो है वो एकदम तुच्छ लगे आपको, और आपको उसमें बड़ा आनंद आ जाए कि भाई ये अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा सोल्यूशन है और बार बार रेगुलरली जाते रहेंगे तो ये दुखों का अनुभव इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को आप बिल्कुल, जैसे आपको पता चल गया कि मेरे को जो बीमारी है ना उसकी ये दवा है और एक ही इसका इलाज है कि ये दवा रेगुलरली लेनी है तो फिर बीमारी का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जरूर उसको लेंगे, याद करके लेंगे, क्योंकि आपको वो कष्ट का अनुभव नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सबके जीवन में कष्ट है, लेकिन कष्ट को मिटाना है तो भक्ति के अंगों को अपनाना है, भगवान के नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान के विग्रहों की पूजा करनी है और नियमित रूप से धाम में जाना है और वहां पर निवास करना है, चाहे 4 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 15 दिन का, कब मौका मिलेगा तभी हो, नियमित वहां जाना है और संग करना है सब कुछ छोड़कर। ये हमारे भव रोग का प्रिस्क्रिप्शन है, हम डॉक्टर लोग देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, आपको ये दवा 3 बार लेना है, ये दवा 2 बार लेना है, ये खाने के बाद लेना है, ये खाने के पहले लेना है, ये सोने के पहले लेना है, आप लोग फॉलो करते हैं उसको क्योंकि आपको पता है कि मुझे उस बीमारी से अच्छा होना है, मुझे ठीक होना है, इसलिए मुझे ये पालन करना जरूरी है। तो वैसे ही भव रोग होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उससे मुक्त होने का ये स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है और उसका एक अंग को हम लोग अभी अपनाने को जा रहे हैं। तो आप सबके लिए मेरी शुभकामना और हृदय से आपके लिए प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी चेतना का बैग में अच्छा चेतना तैयारी करके भरेंगे और अपने आप ही अपनी यात्रा सफल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, एनी क्वेश्चन, कोई शंका है किसी की, डाउट है? डॉक्टर सम्राट हमारे परमानेंट यात्री है, सम्राट और सम्राज्ञी और राजकुमार सबको लेके आते हैं यात्रा में। और कोई प्रश्न है, यात्रा कमेटी कोई प्रश्न है? महेश कुचरेकर फोटोग्राफर, वही हमारे परमानेंट मेंबर हैं, हर यात्रा में आके हमारी यात्रा के मधुर मधुर जो मेमोरीज हैं उसको स्टोर करके रखते हैं वीडियो और फोटोग्राफ के रूप में। बहुत लोगों के सहयोग से यात्रा संपन्न होती है। यस प्रभु जी।